divina namne gaurusa jave gaura chandraya radhikayai sadane krishnaya krishna bhaktaya sada bhakta bhaktya vihinaya paradarasya tirthasya samadhi taranga madhyai कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते शरणं यन्तप्रयन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरहकातरयाजिः पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतेषु वास्मि तवै वास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाहम् उस दिन हमने कहा था ना ये वेदांत के चार सूत्र याद करके आना बोलो तो चार सूत्र अथ अनंत शंकराचार्य का कहना यह है कि ये जगत नश्वर है। शंख पातंजल जो इत्यादि ये पूर्ण नहीं है, इससे आत्यंतिक मुक्ति नहीं मिल सकती, अत्यंत दुख निवृत्ति रे वो मुक्ति ये नहीं है। जब तक कि ब्रह्म को नहीं जानेगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। अतः अनंतर मैंने क्या, ये सब वेद उपनिषद शास्त्र इत्यादि पढ़ रखे हैं, न्याय इत्यादि पढ़ लिया तब मुक्ति की आवश्यकता समझ करके ये देखता है कि बिना उनकी जानकारी के, बिना उनको तत्व से जाने ये आत्यंतक मुक्ति नहीं होगी, इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। उनको जानने से ही अपने आप अज्ञान दूर हो जाएगा और आत्यंतक मुक्ति हो जाएगी। रामानुज इत्यादि ने कहा यह बात गलत है, संसार दुखपूर्ण है, नश्वर है, ये जब तक कि ब्रह्म को नहीं जानेगा तब तक इन दुखों से उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए नारायण तत्व ही ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म को नारायण को जानने से, इसलिए अथ अनंतर मैंने क्या, सदाचार संपन्न वैष्णव की सेवा इत्यादि कुछ संगला संसार की दशा की उपलब्धि होना, यह सब होने के पश्चात में तब ब्रह्म की जिज्ञासा। दूसरे दूसरे दार्शनिक भी कुछ कुछ कहते हैं, न्याय सांख्य पातंजल और ये जो पंच दर्शन है उनको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद भी, अथवा अनंत पढ़ लेने के बाद उनका जगत जीव और ये सब के विषय में संशय रह जाता है। इसलिए ब्रह्म को जानने से ये सारे संशय दूर हो जाएगा। उनके चरणों में जब भक्ति होगी जानकर ये कौन है वो ब्रह्म, इसकी भक्ति करने से दुखों से सदा के लिए छुटकारा भी हो जाएगा और उनके चरणों में शुद्धा भक्ति, इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा बहुत जरूरी है। हम लोगों के गौड़ीय वैष्णवों ने विचार किया है, अथ मैंने संक्षेप में बतला रहा हूँ, अथ अनंतर, अनंतर मैंने क्या, जब ही को श्रद्धा उत्पन्न हो जाए हरि कथा में भगवान के चरणों साधारण रूप में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, वो सभी इसके लिए अधिकारी है। ब्रह्म की जिज्ञासा करके उसको चित्त शुद्धि इत्यादि की कोई भी जरूरत नहीं। अत्यंत निम्न स्थिति में कोई अजामिल जैसा व्यक्ति भी, दुराचार में फंसा वाला भी व्यक्ति, किंतु साधु संग में उसको यदि हो जाए तो वहीं से वो ब्रह्म जिज्ञासा। कृष्ण कौन है? दूसरी बात, वो यह समझेगा अथ सारे उपनिषद वेद भी पढ़कर और क्षण दर्शन भी पढ़कर देखता है कि वेदों के प्रतिपाद्य जो मुख्यतः उपनिषदों के जो प्रतिपाद्य निर्विशेष ब्रह्म हैं, उनको उनके गुणों का उसमें वर्णन नहीं किया गया। तो उपनिषद एक जब ब्रह्म है उनसे हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं। जब यह समझेगा, जब वह समझे कि नारायण इत्यादि भी तत्व हैं, ये यथार्थता में आनंद की ये अंतिम सत्ता नहीं है। नारायण क्या, नारायण से ऊपर द्वारकाधीश भी परतत्व की सीमा नहीं है। द्वारकाधीश मथुरेश भी चरम तत्व की सीमा नहीं है। यह उपलब्धि करेगा, उपलब्धि करने के बाद में तब वो देखेगा जैसे जीवों के लिए चरमोपास्य कौन है, इसके लिए व्यास जी ने इसको उठा कर सकता है। अथ अनंत अनंत, और इसके बाद में किस लिए, ततः अथातो अतः अतः मैंने किस लिए, अतः मैंने साधु संग हुआ और उनके साधु संग में उसकी स्पृहा हुई। ये परतत्व की सीमा कौन है, अथा तो ब्रह्म, तब ये जिज्ञासा होगी कि वो परतत्व की सीमा श्रीमद् भागवत में उन्होंने ये सूत्र में बतलाया है, तो वो कौन है, रसपो सवई रस रसो वही स, ये कृष्ण ही परतत्व की सीमा है। इसको बतलाने के लिए उन्होंने ये बतलाया है। ये गौड़ियों का विशेष परतत्व की सीमा आनंदमय पुरुष होना चाहिए, रस पूर्ण मनुष्य होना चाहिए परतत्व, इसलिए इस तत्व को पूछा। ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए दूसरे श्लोक में जन्मादर्श जता में इसकी पूरी व्याख्या दी, और लोगों की भी व्याख्या दी, मध्वाचार्य ने, रामानुज ने, निम्बार्क ने पारिजात भाष्य में, और सब लोगों ने, वल्लभाचार्य ने भी उसके ऊपर में लिखा, आनंद भिक्षु ने, विज्ञान भिक्षुक ने, ये सब लोगों ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर में व्याख्या की। अंतिम में बलदेव विद्याभूषण ने की, और जीव गोस्वामी ने अपने सत्तर संदर्भ इत्यादि में संदर्भों में विशेष करके सब संपादनी में उसके 550 सूत्रों में से करीब करीब 300 सूत्र उन्होंने लेकर के और इस चीज की व्याख्या, विशेष करके इन चारों सूत्रों, तो इसलिए था तो ब्रह्म जिज्ञास। कल दूसरा श्लोक सूत्र पढ़ करके और विचार करके आने। अब भजन रहस्य, राधा नाम सुधार सम रसयितुं जीवत्वमे विह्वला पादौ तत्पदकांक्षिता सुचरतां बिन्दा कवि विचितु तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्यापदं ध्यायतां तद्भावोत्सवरतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। जीवा भवतु विह्वल राधा नाम गाने, राधा नाम सुधा रसम रसई, ओ मेरी रचना राधा नाम की, का जो सुधा है
मत उसके रस को आस्वादन करने में लगो। मैं उसमें विफला विफल है विफल हो बल्कि ये प्रार्थना कर रहे हैं पागों और चरण वृंदावने चलो पद राधा अन्वेषणे। वृंदावन में कृष्ण अनुसंधान नहीं कहा बतलाया राधा पद अन्वेषण के लिए वृंदावन में चलो हे मेरे पैर राधा सेवा करो कर हे कर सत्कर्मैव कर करोतु हृदयम करोतु सत्कर्मैव मैंने उनकी सेवा के जो कार्य हैं उसको हे कर सब समय तुम संपादन करो। कैसा जैसे बतला रहे हैं हमारे गोस्वामी लोग क्या हो वो हाँ हाँ ये बृंदारण्य महेश्वरी शतपति जस तोषयंती प्रिया प्राण पेशी शिलादपि किला संकोचिता भूमिका केलु भूमेशु रूप मंजरी मुखा सदासी। ये ऐसे ही रूप गोस्वामी के सनातन गोस्वामी के रघुनाथ दास गोस्वामी के सब कीर्तन के पद हैं या श्लोक सब हैं उसमें विशेष करके उज्ज्वल निर्मल ने उनके सेवा का निर्देश किया गया। इसे ऐसे सेवाओं को हमारा हाथ सब समय करें राधा सेवा करो कर राधा स्मरम माने राधा भाव भावे मति ध्वज राधा प्राण धन राधा भावे मति ध्वज राधा भावे मति माने राधा के प्रति रूपमंजरी इत्यादि की जो सेवा की भावना है उसी रूप में तुम राधा जी की सेवा करो वैसे तुम्हारे मति। ऐसा नहीं कि राधा जी का कृष्ण के प्रति जैसे प्रेम सेवा है वो नहीं राधा भाव अथवा कृष्ण की जो सेवा करते हैं वो तो संभव पर नहीं है। इसलिए राधा जी की सखियाँ श्रीमती राधिका की जैसे सेवा करती हैं मन ऐसा ही सेवा करो ये भजन की परिपाटी है। तत्रैव राधा पद पाद पद में एकमात्र गति बतला रहे हैं ये सब गोस्वामियों का उन्होंने ग्रहण किया विशेष करके रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के विचारों को ले रहे हैं। देवी दुखपुल सागर उदरे दुयमानम अति दुर्गतम जनम संकृपा प्रबल नौकाया अद्भुतम पाय स्वपद पंकजालयम। हे देवी श्रीमती राधिका के लिए संबोधन कर रहे हैं ये है विलाप पुष्प मंजरी का श्लोक। विलाप पुष्प मंजरी मैंने क्या विलाप आतनाद करते हुए अपने विलाप को पुष्प मंजरी बनाकर राधा जी के चरणों में समर्पण कर रहे हैं जिससे कि वो प्रसन्न हो। इसलिए हे देवी दुखपूर्ण सागर उदरे विश्व ब्रह्मांड के जितने भी दुख हैं यहाँ तक कि दावाग्नि और प्रलयाग्नि कोटि कोटि मिल करके भी राधा जी के विरह में जो दुख है उसकी तुलना नहीं कर सकते। और सुख जब उनका मिलन का सुख है उसको वैकुंठ इत्यादि सब सुखों का सार मिल करके भी करोड़ों गुण करने पर भी उस सुख से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए कोई भक्त जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है कभी कभी उनका उनके मिलन की स्फूर्ति होती है स्फूर्ति में देखते हैं वो राधा जी की सेवा कर रहे हैं जैसा कुष्मा विलाप कुष्मांजलि में बतला। और कभी कभी स्फूर्ति के बंद हो जाने पर जैसे महाप्रभु को होता था महाविरह में कातर हो जाते तो उनका दुख क्या है विरह का दुख है सांसारिक दुख नहीं कह रहे हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अंततः भावावस्था आने पर कुछ कुछ कल्पना कर सकते हैं उसके पहले नहीं। हे देवी मैं दुख विश्व ब्रह्मांड के जितने दुख हैं उन सबसे करोड़ों गुण करने पर भी सागर के समान जो दुख है उदरे उसके गर्भ में निमग्न दुयमानम अति दुर्गतम जन्म, दुर्गतम जन्म, दुर्गतम माँ फिर हमें कात होकर के बतला रहे हैं हमारी कोई सहायता करने वाला, मैं असहाय दीनहीन, सबसे संसार में कौन सा असहाय व्यक्ति है, कोई दुखी है तो उसके लिए वो सबसे दुखी कौन है, संसार के दुखी वाले दुखी उतने नहीं है, बस संसार वाले सोचते हैं हमको कोई सहायता करने वाला नहीं है, प्रभु ऐसी करे कि हमारे दुख से हमको छुटकारा मिले, किंतु भक्त को ऐसा नहीं, भक्तों का केवल एक ही दुख है। कृष्ण का या श्रीमती जी का यहाँ पर श्रीमती जी के लिए उनका दर्शन नहीं मिलना और उस दुख को इतना अनुभव करते हैं कि विश्व ब्रह्मांड का जितना समुद्र है उससे भी अधिक वो अनुभव करते हैं, इसलिए छटपट करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी विरह में मूर्छित हो जाते हैं, रूप गोस्वामी मूर्छित हो जाते हैं, दुयमानम उसमें डूब रहा हूं ऐसे दो और असहाय हूं, कोई भी मेरा सहायता करने वाला नहीं, साधु संग रूपी सहायता नहीं, गुरु की कृपा मैं नहीं प्राप्त कर सका, मैं बहुत दुर्गत हूं, निम्नगामी हूं, ऐसा समझ करके हे देवी तं कृपा प्रबल नौकया अद्भुतम, आपकी कृपा ही एकमात्र प्रबल अत्यंत मजबूत सुदृढ़ नौका है और ऐसी अद्भुत नौका है, नौका के स्मरण करने से ही नौका इसी पार में रही और उसका आश्रय करने वाला व्यक्ति दुख के उस पार चला गया तो कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, श्रीमती राधिका जी का दर्शन हो जाएगा, ऐसी अद्भुत नौका है। जैसे के जाबी भाई भवसिंधु का नाम लेते ही नाम की नौका, नाम का स्मरण करते ही नौका तो इसी पार में रह गई और जो साधक है उस पार चला गया, कब पार हो गया कैसे इसका पता नहीं चलता है, इसलिए आपकी कृपा अद्भुत है, कैसी अद्भुत है, प्रबल बड़ी सुदृढ़ नौका है। प्रापय आप कृपा करके इस नौका को दें, आप हमारे ऊपर में कृपा कीजिए, मैं योग्य हूं इसके सब कुछ भी मैं योग्य नहीं, सर्वथा असहाय हूं, स्वपद पंकजादयम अपने चरणों की कृपा हमारे ऊपर, इसलिए भक्त प्रसाद कृपा और भगवत प्रसाद, कृष्ण और राधा जी की कृपा ये भगवत प्रसाद है और भक्तों की कृपा भक्त प्रसाद, साधन से नहीं होगा, लाख साधन करें वो नहीं होगा, आपके साधन के परिश्रम से यदि उनको कृपा हो जाए तो ये संभव है। रघुनाथ दास जी करें उद्भट आरती, उद्भट आरती है कि नहीं आगे आएगा, उद्भट आरती, उद्भट आरती किसको कहते हैं, हम लोगों को कोई मारे पीटे और कोई सहायता करने वाला न हो और पीटता हुआ चला जा रहा है और उस समय कैसी आरती होगी, कैसी आरती, आपको काटने के लिए तैयार है, दस पांच आदमी ने पकड़ लिया, सर से मच नहीं करते और चारों तरफ से बंदूक तान दिया और शूट करने जा रहे हैं, अब देख रहे हैं कि अब मैं मरा, उस समय में उद्भट आरती हो सकती है किंतु भक्तों की आरती और भी है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, इसलिए उनकी आरती कैसी है, अत्यंत उद्भट आरती है, इसलिए जिसको देख करके उनका चित्त द्रवित हो जाए और वो कृपा करें, इसलिए जितने भी साधन हैं सब उनकी कृपा के प्राप्ति के लिए ये सब साधन है, साधन वो है, ऐसा नहीं कि साधन करके उनको पा जाएंगे हम, ये संभव नहीं, कालिया ने कौन सी कठोर साधन की जिसके चरण कमल को ब्रह्मा शंकर और सब ऋषि महर्षि लोग, बड़े बड़े लोग अपने हृदय में ध्यान करते हैं और वो नहीं आता, और साक्षात उन चरणों से साक्षात रूप में कालिये के पैर को सिर पर दे करके और नृत्य कर रहे हैं, आनंद से मग्न होकर के अपने परिजनों को देखते हुए और नृत्य कर रहे हैं, तरह तरह से भंगिमाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। ये काली का काली कौन सी महत्ता थी, कौन सा साधन उसने किया, जिनके सी अंगों का ध्यान जितने ऋषि महर्षि सब लोग नहीं कर सकते, नहीं होता है वो, है ना, गोपियों की उक्ति आहुष्यते ननिलनाभ पदार बिंद जोगेश्वरैरपि विजिक्षन्ते अगाध बोधै संसार कुपतितो तरणाम। तो इस श्लोक में देखो, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोगों के लिए वो चिंतन है और नहीं आते ध्यान में, कौन सा साधन अघासुर ने किया, ये केवल चरण कमल ही नहीं, चरण कमल इत्यादि के साथ में सुंदर मुस्कुराते हुए कृष्ण बंसी लेकर के और सब सखाओं और गाय और बछड़ों के सहित सखाओं के साथ में उसके पेट में अंदर में चले गए। इसकी इसके बाद देखो, ये सब अहत की कृपा है, क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये केवल मात्र पूतना को देखकर माता के काबेश बनाकर वात्सल्य से कृष्ण को गोदी में लिया मारने के लिए, किंतु कुछ कर रही थी केवल इस मात्र से, क्या पूतना के भाव से उसको ऐसी परम गति मिलेगी जो कृष्ण उसके हृदय में प्रवेश कर गए। ये सब अहद की कृपा है, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी का है, संसार दुख जलधौ पतितस्य काम क्रोध नकर मकरादि कौली कृतस्य दुर्वासना निगड़ितस्य निराशयस्य चैतन्य मम देहि पदावन। ऐसे प्रार्थना किया जाए भजन के समय, तब तो ये भजन करने के तरीके हैं, नाम करने के तरीके हैं, चिंतन करने का ये तरीका है, इस नियम के साथ में भजन किया। हरिदास ठाकुर को बाइक बाजार में मार रहे थे घोड़े से, चमड़ा निकल गया, रक्त निकल गया, धज्जिया धज्जिया उड़ गई, मांस भी निकल गया, केवल हाड़ बच गया, हाड़ भी तोड़ दिया होगा, आंख ऊंह कभी किया, और हम लोग, और उसको कह रहे हैं ये तुम्हारा कल्याण हो भगवान प्रभो, इसका कल्याण करना, और हम लोग कहां देखो, कहां सहिष्णुता, कहां धैर्य, भगवान पर विश्वास, ये तो संसारिक बात, उससे भी लाखों गुना दुख है भगवान का विरह और राधिका जी का विरह और भी अधिक, यदि कृष्ण को कृष्ण के लिए किसी का विरह हो उसे लाखों गुना विरह होना चाहिए राधा जी के विरह में, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो। इसलिए पावावली में पुनः वो रघुनाथ दास को शामिल करें, इसलिए बतला रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर क्या क्या करते थे, हरि नाम की माला ले लिया, गभीर रात में, गभीर रात में सो करके उठे और उस सबके माला कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं और ये सब पदावलियों को श्लोकों की आपूर्ति कर रहे हैं, और उसका जो बंगला में अथवा उसके लिए पदावली अलग से कर, वही शरणागति कल कल्याण कल पतरु, और उसके बाद में विशेष ये चाटु पुष्पांजलि इत्यादि का पद्यों में उन्होंने बजाया, वो और अधिक, ये सब भजन के तरीके हैं उन्होंने दिखे। पादाब्जो सौ बिना वरदाश्रमेव नन्नत कदापि समय किल देवी जाति, इसकी व्याख्या में जो ऊपर में बतलाया ना, देवी दुख कुल सागरो दरे दुईमान मत दुर्गतम जनम संकृपा प्रबल नौकयाद्भुतम प्रापय पद पंकजाल, क्यों इतने दुखी हो कर रहे हैं, है तो उनकी कुछ स्मरण करते 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 अष्टकालीय लीला में से उन्होंने स्मरण किया, उनको खुशी जगी। राधा और कृष्ण परस्पर मिले हुए उस समय में कृष्णचंद्र जी राधिका जी को अलता पहना रहे हैं और उनकी टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो जाती है भावों के उद्गम से। राधा जी कहते हैं इनको किनको, रति मंजरी को कहते हैं, अरे रति या रूप इसके द्वारा नहीं होगा, ये क्या कर सकता है, ये कुछ जानता नहीं है, अभी नया है, इसलिए तुम कर दो। तो उनको कहा कि भाई दो वो तुली हमारे हाथ में, कृष्ण कृष्ण दे नहीं रहे, तो उन्होंने धक्का दे दिया कृष्ण को, धक्का दे दिया। उस समय में धक्का दे करके जो ही वो अपने हाथ में तुली लेकर रति मंजरी दी, रति मंजरी मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी भाव चिंतन, उस समय जो ही हाथ बढ़ा करके उनके चरणों में लगाने जाते हैं, इतने में वो भाव खत्म, स्फूर्ति खत्म हो जाती है, देखते हैं कि हाथ में कुछ नहीं है, न राधा जी है, न कृष्ण है, न कोई गोपी है, न गोप है, बस पछाड़ खा करके गिर जाते हैं और रोने लगते हैं, यहाँ है हमारा ऐसा दुर्भाग्य। तब ये फिर रो करके ये कहते हैं, देवी दुख कुल सागर हो गए, कब आप कृपा करेंगी, पादाब्ज, इसीलिए पादाब्ज, पादाब्ज का जहां लीला से संबंधित है, पादाब्ज यो तव बिना परदास्यमेव नन्यत् कदापि क्षमेहि किल देवी जाति, सक्षायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यं, दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु। इन्होंने सब जगह पहले ये सब भूमिका बांध रहे हैं और इसके बाद में सवेरे से सवेरे तक की सारी लीलाओं का वर्णन करते हुए प्रार्थना की है कि आपकी लीला में कैसे प्रवेश करके आपकी सेवा कर सकूं सवेरे से। तो उसमें अभी भूमिका में ये बतला रहे हैं, हे देवी यदि आप प्रसन्न हैं तो पादाब्जयो तव बिना वरदास्यमि, आप समस्त वरदात्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, वरदान देने में समर्थ हैं, दे सकती हैं, किंतु मैं साधारण कोई वर नहीं चाहता, आपके श्री चरणों की सेवा के बिना और कोई भी दास कोई भी वर मैं नहीं चाहती, नन्नत कदापि समय किल देवी चाहती, किसी समय नहीं और कोई दूसरा वर नहीं चाहती, सख्याय थी मम नमस्तु नमस्तु नित्यम, आप यदि कहती हैं प्रसन्न हमारी सखी बन जा और हमारी तरफ में कृष्ण की सेवा करो, अभी हमें जरूरत नहीं है इसकी, इसके लिए हमको नमस्कार है दूर, इस पद के लिए बहुत ऊंचा पद हम नहीं चाहते, हमारे लिए संभव पद नहीं है, दास्य आए थे तुम्हारा जो दास्य है, आपकी जो सेवा है मम रसोस्त उसी में हमारा आनंद है, रसोस्त सत्यम मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, दास्य आए थे ममो रसोस्त रसोस्त सत्यम, आपके सभी सभी पद के लिए हमारा नमस्कार है, मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहता हूँ कि आपके चरणों की सेवा मैं जन्म जन्मांतर तक कर सकूँ। श्रील रूप गोस्वामी जी तत्रैव तत्रैव मैंने यहाँ पर सब गोस्वामियों के लिए सब तत्रैव तत्रैव कह रहे हैं भाव के लिए, ये सब एक ही जगह का नहीं है, स्तवावली का नहीं, ये स्तवमाला, स्तवमाला रूप गोस्वामी जी का, स्तवावली है रघुनाथ दास गोस्वामी का। हा देवी काकू भर गदगद याद होता है, काकू भर वही आर्थनाद के साथ में ये भी रूप गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, हा देवी काकू भर गदगद याद्यवाचा जाते निपत्त भूमि दंडवत उद्भटा दे, मैं पृथ्वी पर गिर कर साष्टांग प्रणाम करते हुए उद्भट आरती के साथ में हृदय जला जा रहा हो, शरीर जल रहा हो, दुख को सहने में असमर्थ हैं, अश्च प्रसाद मधुभक्त जन सके, मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, मैं नहीं जानता जी आपके कैसे सेवा होती है, मैं मूर्ख हूँ सब प्रकार से, विषयों में भी पड़ा हुआ हूँ, हो सकता है कह रहे हूँ, तब आपका जनस्य, जनस्य माने क्या, साधारण ज्ञान के लिए मैं आप ही का जन हूँ, आपका ही सेवक हूँ, जैसा हूँ मूर्ख हूँ चाहे असहाय, जैसा हूँ आपका हूँ। और जनक चकृत्वा आप कृपा करके गांधारवी के, हे गांधारवी के परम सुंदरी रूप से, संगीत से, सेवाओं से, सब प्रकार से आप गंधर्वा के समान हैं। सब गणी गणनांग विधि, आपके गणों में जो सेवा करने वाली हैं उनमें मेरा भी नाम एक लिख लीजिए, मैं आपकी सेविका बनूंगा। भूमे दंडवत पड़ी बहु आरती स्वरे, कातु भरे गदगद वचन जोड़ जोड़ करे, प्रार्थना करी गो देवी ए अबुध जने, तब गणे गणी कृपा करो अकिंचन, मैं अकिंचन हूँ मेरे ऊपर में आप कृपा कीजिए। अब तत्रै मनी यहाँ पर क्या होगा, राधा रस सुधा निधि उसमें बतलाया गया, कृष्ण मनोमोहिनी राधा दास्य रति प्रार्थना, राधा जी की कृपा के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं। वेणु करान्निपतितं खलितं शिखंडं भ्रष्टं च पीतवसनं ब्रजराजसूनुं यस्या कटाक्षसरघात् विमुच्छितस्य तं राधिका परिचरामि कदारसे। वेणु करान्निपतितं जस्या कटाक्ष सरघात विमोचित, जस्या कटाक्ष सरघात जिनके कटाक्षों से श्री कृष्ण के हाथों से वेणु गिर जाती है, जिस वेणु को सपने में भी नहीं छोड़ते, दिन रात अपने हाथों में बगल में सपनों में लेकर के सोते भी हैं तो वैसे, किंतु यहाँ पर गिर जाती है। खलितम शिखंडम उनका मोर पंख का मुकुट भी गिर जाता है, भ्रष्टं च पीतवसनम उनके वसन भी खलित हो जाते हैं, ऐसे जो ब्रजराज सिंह हैं सांगराज।